लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है एशिया और ओशियाना के देशों में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तुता है जूलियट क्रिस्टोफर, सिस्टर उषा तिर्की तथा सिस्टर अनुग्रह मिंज। तिमोर लेस्ते में अपनी 3 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा पूरी कर यात्रा के अंतिम चरण में संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार तड़के दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सिंगापुर के लिए प्रस्थान किया। विश्व के सर्वाधिक कैथोलिक बहुल देशों में से एक तिमोर लेस्ते में मंगलवार संध्या संत पापा फ्रांसिस ने दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में लगभग 3,000 युवा प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें अपना संदेश दिया। सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परम धर्मगुरु संत पापा फ्रांसिस ने 2 सितंबर को एशिया और एशियाना के देशों में अपनी 11 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा शुरू की थी। इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी तथा तिमोर लेस्ते के उपरांत संत पापा ने बुधवार को दिल्ली के स्थानीय समय अनुसार 12:25 पर यात्रा के अंतिम पड़ाव सिंगापुर के लिए प्रस्थान किया। आधिकारिक तौर पर सिंगापुर गणराज्य कहलाया जाने वाला सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीप देश, शहर और राज्य है। यह मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर, पश्चिम में मलक्का और इंडोनेशिया में रियाउ द्वीप, पूर्व में दक्षिण चीन सागर तथा उत्तर में मलेशिया से घिरा हुआ देश है। देश में एक मुख्य द्वीप, 63 उपग्रह द्वीप और टापू तथा एक बाहरी टापू शामिल हैं। व्यापक भूमि सुधार योजनाओं के परिणाम स्वरूप देश की स्वतंत्रता के बाद से इनका संयुक्त क्षेत्र लगभग 25% बढ़ गया है। एक छोटा द्वीप देश होने के बावजूद सिंगापुर विश्व के किसी भी देश की तुलना में 3रा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। व्यापार और उद्योग में निपुण सिंगापुर एक बहुसांस्कृतिक आबादी वाला देश भी है। देश के प्रमुख जातीय समूहों की सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देने के लिए सिंगापुर में 4 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो हैं अंग्रेजी, मलय, मंदरिन और तमिल। अंग्रेजी आम भाषा है जिसका कई सार्वजनिक सेवाओं में विशेष उपयोग होता है। राष्ट्र के संविधान में शिक्षा, आवास और राजनीति में राष्ट्रीय नीतियों को आकार देना प्रमुख है। सिंगापुर में स्वागत समारोह के बाद संत पापा फ्रांसिस सेंट फ्रांसिस जेवियर रिट्रीट सेंटर जाएंगे, जहां वे इस यात्रा की पूरी अवधि के लिए रहेंगे। सिंगापुर में 3 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा के दौरान संत पापा फ्रांसिस अपना पहला दिन यहां सेवारत येसु धर्म समाजी जेसुइट भाइयों के साथ एक निजी मुलाकात कर व्यतीत करेंगे। उनके सार्वजनिक कार्यक्रम गुरुवार को ही शुरू होंगे, जब वे सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में देश के राजनेताओं, वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों तथा यहां कार्यरत राजनयिक कोर से मुलाकात कर उन्हें अपना संदेश देंगे तथा राष्ट्रीय स्टेडियम में सिंगापुर के कैथलिकों के लिए पवित्र ख्रीस्त्याग अर्पित करेंगे। संत पापा फ्रांसिस शुक्रवार 13 सितंबर तक सिंगापुर में रहेंगे तथा वहां से पुनः वैटिकन लौटेंगे। उनकी यात्रा के अंतिम चरण का आदर्श वाक्य है एकता और आशा। तिमोर लेस्ते में संत पापा फ्रांसिस का अंतिम कार्यक्रम मंगलवार को दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में युवा प्रतिनिधियों से मुलाकात रहा, जिसमें संत पापा ने स्वतंत्रता, प्रतिबद्धता और भाईचारे के मूल्यों के महत्व के बारे में बात की तथा युवा तिमोर वासियों से आग्रह किया कि वे स्वतंत्रता को दूसरों की भलाई करने के अवसर के रूप में अपनाएं। संत पापा फ्रांसिस ने प्रशांत महासागर स्थित कैथोलिक बहुल देश तिमोर लेस्ते में 3 दिन व्यतीत किए। यहां की कुल आबादी लगभग 14 लाख है, जिनमें से 95% कैथोलिक धर्मानुयायी हैं। प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के निकटवर्ती तासी टोलू के एस्प्लेनेड में संत पापा फ्रांसिस द्वारा अर्पित ख्रीस्त्याग समारोह में लगभग 6,00,000 लोग शामिल हुए थे। पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश तिमोर लेस्ते एक युवा देश है जिसने 2002 में ही इंडोनेशिया से स्वतंत्रता प्राप्त की है, जहां की जनसंख्या की औसत आयु मात्र 20 वर्ष है। यह बात संतपापा फ्रांसिस के आगमन और उनके 3 दिवसीय देश में पड़ाव के दौरान सड़कों पर निकलते उत्साही बच्चों से स्पष्टतया परिलक्षित हुई। संतपापा फ्रांसिस का ध्यान भी इस ओर गया जिन्होंने मंगलवार को क्रिस्त्याग प्रवचन के समय तथा बुधवार को दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में युवाओं से मुलाकात के अवसर पर इस बात को दुखराया कि बच्चे और युवा भावी आशा के संकेत हैं।
तिमोर लेस्ते की 3 दिवसीय प्रेरित यात्रा में पोप फ्रांसिस का अंतिम कार्यक्रम रहा दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में वहां की युवाओं से मुलाकात। दिल्ली कन्वेंशन सेंटर में करीब 3,000 युवाओं ने संगीत, नृत्य और साक्ष्यों के साथ उनका स्वागत किया। पोप ने उन्हें बुजुर्गों का सम्मान करने एवं स्वतंत्रता, प्रतिबद्धता एवं भाईचारे के मूल्यों को अपनाने के महत्व की याद दिलाई। संगीत की लय के साथ झूमते, हाथ हिलाते और मुस्कुराते हुए संत पापा ने युवाओं का दिल जीत लिया। उन्होंने युवाओं के साथ अपने मुलाकात के कार्यक्रम को कन्वेंशन सेंटर के प्रवेश द्वार पर कुंवारी मरियम की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करने और 4 युवाओं की गवाही के साथ शुरू किया। रोजारिया डोस एस एक्स 32 ने साक्ष्य देते हुए कहा,
पापा फ्रांसिस्को,
पोप फ्रांसिस, मेरा नाम रोजारिया डोस एस एक्स 32 है। जब मैं ग्रामीण इलाके से दिल्ली शहर आई तो मैंने देखा कि नलियां गंदगी से भरी हुई थीं और पहाड़ियों पर कई पेड़ नष्ट हो गए थे। जब भारी बारिश होती है तो अक्सर बाढ़ आ जाती है, नालियां कचरे से भर जाती हैं एवं पानी ठीक से नहीं बह पाता तथा घरों में घुस जाता है, जिससे चीजें बर्बाद हो जाती हैं और कई मामलों में हताहत भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कचरे को उसके सही स्थान पर नहीं डालते और हम बिना किसी नियंत्रण के जंगलों को साफ कर देते हैं। लौदातो सी के प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे व्यवहार ने हमारे आम घर पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। मेरा प्रश्न है कि हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं कि हर जगह कूड़ा ना फेंका जाए और पेड़ों को अंधाधुंध ना काटा जाए। हमारे आम घर की देखभाल के लिए हमारे आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगले साक्षी के रूप में इल्हम महफूत बजहर ने कहा, संत पिता, मेरा नाम इल्हम महफूत बजहर है और मैं मुसलमान हूँ। तिमोर में हमें लगता है कि वास्तव में धार्मिक सहिष्णुता है। तिमोर के अधिकांश लोग समझते हैं कि एक साथ कैसे रहना है। भले ही हम अलग अलग धर्मों से आते हों, हम मानव बंधुत्व पर आपके दस्तावेज के लिए आभारी हैं, क्योंकि यह हमें सहिष्णुता में रहने के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान करता है। इस देश में एक मुसलमान के रूप में मैं वास्तव में इस आशीर्वाद से अवगत हूँ। पोप फ्रांसिस से मेरा अनुरोध है कि आज के सोशल मीडिया का प्रभाव लोगों को एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करने और यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ भेदभाव करने के लिए प्रभावित करता है। इसलिए हमें युवाओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में अधिक जिम्मेदारी बरतने और सेतु बनाने एवं धर्मों के बीच सहिष्णुता और संवाद की संस्कृति में रहने के लिए आपके संदेश की आवश्यकता है। फिर आगे सिसिलिया एफरानो बोनापार्ट ने साक्ष्य देते हुए कहा, जब मैं बच्ची थी तो मेरा परिवार एकजुट था या विश्वास प्रशिक्षण का केंद्र बन गया था। हम हमेशा साथ में खाना खाते और प्रार्थना करते थे। हमारे माता पिता हमारे साथ होते थे और हमें सिखाते थे कि अच्छे ख्रिस्ते कैसे बनना है। हालांकि आज की तकनीकी दुनिया में आस्था के केंद्र के रूप में परिवार की भूमिका खोती जा रही है, क्योंकि लोग अक्सर अपने सेलफोन पर व्यस्त रहते हैं। जो करीब होते हैं वे दूर हो जाते और जो दूर होते हैं वे करीब हो जाते हैं। पारिवारिक संचार बिगड़ रहा है। युवाओं को खुद को शादी के लिए तैयार करने और भविष्य के परिवारों को बढ़ाने के लिए आपका क्या संदेश है? और अंत में अंतिम साक्षी के रूप में नेल्सन एम दा कोंसेसो ने कहा, हमारे धम्म प्रांत ने आध्यात्मिक एवं मानवीय प्रशिक्षण का आयोजन किया है जो प्रेरित विश्व पत्र क्रिस्तुस विविध को अपने प्राथमिक आधार के रूप में लेता है। यह प्रशिक्षण तीनों धर्म प्रांतों के सभी युवा कैथोलिकों को दिया गया है। फिर भी अभी भी ऐसे युवा लोग हैं जो आसानी से हिंसा के कृत्यों को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनका झुकाव मार्शल आर्ट और कर्मकांड कलाओं के समूहों की ओर जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में क्रिस्तुस विविध को कैसे महसूस कर सकते हैं और पुनः जागृति कैसे ला सकते हैं, और यह दस्तावेज युवा तिमोरियों को अधिक भाईचारापूर्ण और सहयोगात्मक बनाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। साक्ष्य सुनने के बाद संत पापा ने कहा, दादर्याक यानी सुप्रभात, इसी शब्द के साथ संत पापा ने युवाओं के साथ अपना वार्तालाप शुरू किया। पोप ने युवाओं को चौंकाते हुए पहला प्रश्न किया, युवा क्या करते हैं? इस पर युवाओं ने गंभीरता से उत्तर देते हुए कहा, युवा लोग मसीह ईश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, वे प्यार करते हैं। उत्तर सुनकर संत पापा ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं जो पुष्ट करना चाहता हूँ वह यह है कि युवाओं को शोर मचाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा, आप इस भूमि के बहुसंख्यक आबादी हैं और आपकी उपस्थिति इसे जीवन, आशा और भविष्य से भर देती है। इस प्रकार संत पापा ने युवाओं को याद दिलाया कि वे उन लोगों के उत्तराधिकारी हैं जो राष्ट्र की नींव में उनसे पहले आए थे। पोप ने कहा, उन लोगों की याद ना खोएं जो आपसे पहले आए थे और जिन्होंने इतने सारे बलिदानों के साथ इस देश को एकजुट किया। विश्वास के उत्साह को ना खोएं और उन बुराइयों के आगे ना झुकें जो युवाओं को तोड़ देती है, जैसे शराब, नशीली दवाएं और बहुत सी चीजें जो आधे घंटे के लिए खुशी देती हैं। इसलिए संत पापा ने उन्हें सपने देखने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि जो युवा सपने नहीं देखते वे जीवन में सेवानिवृत्त व्यक्ति के समान है। वे कहते हैं कि युवा अपने जीवन की यात्रा में खुद को बच्चों और बुजुर्गों के बीच पाते हैं, जो दो महान खजाने हैं। उन्हें उनका सम्मान और उनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्हें उस व्यक्ति की तरह नहीं करना चाहिए जिसने अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए एक अलग मेज बनाई, क्योंकि उससे अपने बुजुर्ग माता पिता के कारण शर्म आती थी। तिमोर लेस्ते, जिसे पोप फ्रांसिस मुस्कुराता हुआ देश के रूप में परिभाषित करते हैं, वहाँ वीरता की, शहादत की और सबसे बढ़कर विश्वास एवं मेल मिलाप की एक अद्भुत कहानी है। पोप ने इसे रेखांकित करते हुए बच्चों से पूछा कि वह व्यक्ति कौन है जो पूरे इतिहास में क्षमा और मेल मिलाप करने में सक्षम है। युवाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, यीशु हैं, हमारे भाई जो हम सभी को एक साथ चाहते हैं। पोप ने युवाओं को तीन चीजों के लिए प्रोत्साहित किया, स्वतंत्रता, प्रतिबद्धता और भाईचारा। संत पापा ने कहा, एक युवा जो स्वशासन में सक्षम नहीं है वह आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है और बड़ा महसूस करने की अपनी इच्छा का गुलाम है। हालांकि प्रतिबद्धता आम भलाई के लिए होनी चाहिए। एक युवा को यह जानना चाहिए कि स्वतंत्र होने का मतलब यह नहीं है कि वह जो चाहे वही करे। युवाओं पर जिम्मेदारियां होती हैं और उनमें से एक है आम घर की देखभाल करने सीखना। तीसरी सलाह है भाईचारा। हमें भाई बहन बनना है, दुश्मन नहीं, क्योंकि विविधता भी एक दूसरे का सम्मान करने में मददगार है। उन्होंने कहा, प्रेम ही सेवा है, प्रेम मेल मिलाप है। और अंत में उन्होंने युवाओं को पुनः एक बार बुजुर्गों का सम्मान करने एवं कमजोर भाई बहनों के प्रति किसी भी प्रकार की बदमाशी को खत्म करने की याद दिलाई।
बुधवार 11 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस के सिंगापुर आगमन से पहले विभिन्न धर्मों के कई नेताओं ने एशियाई देश में शांति और अंतरधार्मिक संवाद की अपनी आशा व्यक्त की। सिंगापुर के महाधर्म प्रांतीय अंतरधार्मिक संवाद व ख्रिस्तीय एकता केंद्र और कैथोलिक न्यूज ने विभिन्न धर्मों के नेताओं से संत पापा के अंतरधार्मिक संवाद पर रुख के बारे में विचार मांगे। हिंदू सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री के सेंकुटुआ ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस द्वारा सभी विश्वासियों से धर्मांतरण और बाधाओं से मुक्त होकर आपसी सम्मान के साथ शांति स्थापित करने का आह्वान हिंदू प्रवासियों के लिए शुभ संकेत है। श्री सेंगुटुआ ने अपने संदेश में संत पापा फ्रांसिस को संबोधित करते हुए कहा, आपके उपदेशों के माध्यम से धार्मिक सद्भाव की घंटियां बज रही हैं। दुनिया को जिस रामबान औषधि की आवश्यकता है आपने उसे लागू किया है। यहूदी समुदाय के मुख्य रबी मोर्दकाई एबरगेल ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस की सिंगापुर यात्रा के बारे में जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि यह दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ती धार्मिक हिंसा के समय सह अस्तित्व का संदेश देगी। रबी ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस की यात्रा निसंदेह सिंगापुर में अब्राहमिक धर्मों और विभिन्न धर्मों के बीच संबंधों को मजबूत करेगी, जिसके प्रति संत पापा बहुत समर्पित हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के पारसी जोरास्ट्रियन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री होमोरजू ई आवारी ने कहा कि संत पापा ने विभिन्न धर्मों के बीच आपसी समझ, सम्मान और शांति को बढ़ावा देने के साधन के रूप में अंतरधार्मिक संवाद पर लगातार जोर दिया है। श्री होरमुज ई आवारी ने कहा, पारसी लोग पुल बनाने, तनाव कम करने और समानता, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और मानवीय मामलों पर प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए संवाद को बढ़ावा देने में समान विश्वास रखते हैं। सिंगापुर बौद्ध संघ के आदरणीय शेख क्वांग फिंक ने कहा कि विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं ने शांति और सद्भाव की वकालत करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचाना है, जो हर समय और दुनिया भर में आवश्यक है। इस समझ ने द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1949 में फोरकार्कसी मठ में अंतरधार्मिक संगठन की स्थापना को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि संत पापा फ्रांसिस की सिंगापुर यात्रा निश्चित रूप से हमारे द्वीप राष्ट्र में धार्मिक सद्भाव के निर्माण के कार्य को प्रोत्साहित और पुष्ट करेगी। ताओवादी संघ के श्री टैन थियाम लाई और जैन धार्मिक समाज के श्री केनल कोठारी दोनों इस बात पर सहमत थे कि संत पापा फ्रांसिस की यात्रा अंतरधार्मिक समझ को गहरा करेगी, आपसी विश्वास को मजबूत करेगी और सिंगापुर में धार्मिक सद्भाव को बढ़ाएगी। देश के अग्रणी प्रोटेस्टेंट परिषद ने संत पापा की वैश्विक कैथोलिक समुदाय के मार्गदर्शन में निरंतर स्वास्थ्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रार्थना की। लुथरन बिशप लू गुआन हो ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस की उपस्थिति एक गहन आशीर्वाद है और शांति, एकता और सेवा के प्रति हमारी साझा आस्था और प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। सिंगापुर के इस्लामिक धार्मिक परिषद के मुफ्ती डॉक्टर नजरुद्दीन मुहम्मद नासिर ने संत पापा को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के एक प्रमुख समर्थक के रूप में वर्णित किया और शांति एवं सद्भाव के प्रतीक के रूप में सिंगापुर की प्रतिष्ठा का उल्लेख किया। डॉक्टर नासिर ने मानव बंधुत्व पर दस्तावेज का संदर्भ दिया, जिसे संत पापा फ्रांसिस ने अल अजहर के शेख के साथ मिलकर लिखा था, जो मुस्लिम समुदाय के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए वाटिकन के दीर्घकालिक प्रयासों की निरंतरता है। सिख सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री मलमिंदर जीत सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सिख धर्म विश्व शांति को बढ़ावा देने और दूसरों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे मूल्य जिनकी वकालत संत पापा फ्रांसिस ने अपने पूरे जीवन के काम के दौरान की है और जिन्हें मजबूत किया है। सिंगापुर में बहाई आध्यात्मिक सभा के मानद अध्यक्ष श्री के एलंको ने कहा कि संत पापा की यात्रा से सिंगापुर भर के विभिन्न समुदायों, संस्थानों और धार्मिक समूहों के शुभ चिंतकों के सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 13 सितंबर को कैथोलिक जूनियर कॉलेज में संत पापा फ्रांसिस सिंगापुर के विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के युवा नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। सिंगापुर के महाधर्म प्रांत ने संत पापा फ्रांसिस के साथ अंतरधार्मिक युवा कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।